कोशो टॉक्स पॉडकास्ट सीजन 2 एपिसोड 3। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कोशो टॉक्स पॉडकास्ट। कोशो टॉक्स पॉडकास्ट पे हम आपको मिलाते हैं कश्मीर के उन लोगों से जो लोग अपने काम, हुनर, फन और काबिलियत से कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत में कोशिश करते हैं कि अपने गेस्ट्स का इंट्रोडक्शन आपको दें, लेकिन आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन ज़रा सा लंबा है। हम नहीं चाहते कि हमारे पॉडकास्ट ज़्यादा लंबे और ज़्यादा बोरिंग हो। आज के पॉडकास्ट में हमारी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अज़रा मुफ्ती। डॉक्टर अज़रा मुफ्ती को कश्मीर में तकरीबन सभी लोग जानते हैं। कश्मीर में सभी नए लिखने वाले डॉक्टर अज़रा मुफ्ती को अपना रोल मॉडल मानते हैं। इन्होंने कश्मीर और कश्मीर के बाहर बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड फंक्शनस शोज होस्ट किए हैं। कश्मीर में बहुत सारे रियलिटी और टैलेंट शोज इन्होंने बहसीत जज होस्ट किए हैं। अज़रा मुफ्ती की कंट्रीब्यूशन कश्मीर के लिए बहुत अहम और बहुत ख़ास है। अज़रा मुफ्ती एक ऑथर, नावलिस्ट, कॉलमनिस्ट और एक रिसर्च स्कॉलर हैं। इनकी बहुत सारी बुक्स पब्लिश हुई हैं, लोगों ने पढ़ी और पसंद किया। पॉडकास्ट में हम ढेर सारी बातें करेंगे अपनी गेस्ट अज़रा मुफ्ती से। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द शो।
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
मैम, आप आज हमारे पॉडकास्ट पे आए और मुझे एक लाइन याद आ गई। हजरत गालिब फरमाते हैं कि वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। मैम, आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। हम कोशिश करेंगे कि अपने सुनने वालों तक ढेर सारी बातें पहुँचाएँ। शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। आप एक आथर हैं, एक नावलिस्ट हैं, आप लिखते हैं। प्रोफेशन और पैशन में बड़ा फ़र्क होता है। लोग प्रोफेशन वाली लाइफ ज़्यादा चूज़ करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपने जो आपका अंदर पैशन था लिखने का, उसको प्रेफर किया। तो आप अपने बारे में बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें रही हैं ज़िंदगी में जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है लिखने के लिए। तो मैम, आप हमें अपने जर्नी के बारे में बताएं।
जी, आई स्टार्टेड माय जर्नी क्वाइट अर्ली, बट स्टार्टिंग से ही पढ़ने का बहुत शौक था, तो आई थिंक दैट एडेड एज एन एडवांटेज टू माय करियर। सो आई यूज्ड टू स्नीक आउट इन लाइब्रेरी एंड रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। तो क्लास सिक्स से ही मुझे क्लासिक लिटरेचर, जो भी नॉवेल्स हैं, उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। सो आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट। आफ्टर दैट मैंने जब 2009 में आई स्टार्टेड राइटिंग कॉलम्स, so I used to write on different issues, जो भी at that time current issues होते थे, I used to write about those issues in different newspapers, and I feel कि writing columns really helped me in improving my writing. After that, in 2016, I came up with my first book, that's Tearful Pages. But I have always been a very keen reader, so being a reader, it really helped me in shaping my writings.
जी मैम, हम सब में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो दुनिया वाले बहुत कम जानते हैं। और अज़रा मुफ्ती की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ 11 साल की थी जब इन्होंने पहली बार कलम उठाई और प्रोफेशनली इन्होंने पेपर पे कुछ लिखा। वो जो भी इन्होंने लिखा वो ना ही ग्रेटर कश्मीर के लिए था, ना हिंदुस्तान टाइम्स के लिए था, ना फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए था। और वो चिट्ठी इन्होंने लिखी थी अल्लाह को। वो दिन और आज का दिन अज़रा मुफ्ती ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा और ना ही अपने पैशन से कभी कंप्रोमाइज़ किया। अच्छा मैम, कहते हैं कि कलम सबसे पावरफुल चीज़ है दुनिया में। तकदीरें बदल देती है, सोसाइटीज़ बदल देती है, किस्मतें बदल देती है, फैसले बदल देती है। आप एक आथर हैं, तो एक आथर की कंट्रीब्यूशन, जो आथर एक लिखता है, कितनी कंट्रीब्यूशन रहती है एक आथर की एक सोसाइटी के अंदर, और आथर एक सोसाइटी में कितने चेंजेस ला सकता है?
जी बिल्कुल, जैसे कि हम अक्सर एक बहुत ही फेमस सेइंग है, द इंक ऑफ अ स्कॉलर इज होलियर दैन द ब्लड ऑफ अ मार्टर। तो इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि जो एक राइटर है, एक स्कॉलर है, एक आर्टिस्ट है, उनके जो पेन में जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप देखते हैं जो सोसाइटीज है दैट हैव बीन शेप्ड बाय द काइंड ऑफ लिटरेचर। आज भी अगर हम देखेंगे कश्मीर में या किसी भी और कल्चर में, सोसाइटी में, सोसाइटीज हैव डेवलप्ड ड्यू टू द लिटरेचर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कलमकार रह चुके हैं, चाहे वो लियो टॉलस्टॉय है, विलियम शेक्सपियर है, उन्होंने काफ़ी पहले ही प्रेडिक्शन की थी कि सोसाइटीज़ कैसे होने वाली है इन देयर लिटरेचर. तो एक राइटर जो है, एक आर्टिस्ट जो है, एक पोइट जो है, वो सोसाइटी के जो जो भी मसले हैं, मसाइल हैं, उन्हें चाहे वो सटायर में, फिक्शन में, नॉन फिक्शन में सामने लाने की कोशिश करते हैं. सो आई रियली फील कि राइटिंग इज अ वेरी पावरफुल वेपन बिकॉज इट ट्रांसेंड्स ऑल दी बाउंड्रीज. अगेन, एक फ्रीडम एक राइटर के पास होती है, बट दैट फ्रीडम कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप में एक क्रिएटिव लिबर्टी होती है कि आप सोसाइटी में एक चेंज ला सके उन मुद्दों पे बात करके जिन पे बात होनी चाहिए. सो आई रियली बिलीव भले ही चेंज बहुत ही ग्रेजुअल होगा, स्लो होगा, बट डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज. और वो एक राइटर, एक आर्टिस्ट के ही कंधों पे ये चीज होती है कि वो सोसाइटी को चेंज कर सके.
जी मैम, डेफिनेटली ऑथर्स बैकबोन होते हैं सोसाइटी का. जब वो लिखते हैं तो तभी हमारी सोसाइटी के अंदर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिर साइंटिस्ट या फिर कोई भी प्रोफेशन हो, वो पढ़ के अपनी सोसाइटी को सर्व करता है. कश्मीर के अंदर बहुत सारे अच्छे ऑथर्स हैं, लेकिन आज की जनरेशन के जो ऑथर्स हैं उनकी कंटेंट क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती. मैम, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, और आप कश्मीर के अंदर ऑथर्स का फ्यूचर कैसे देखते हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि कश्मीर में जो है राइटर्स और ऑथर्स जो है, क्वालिटी ऑथर्स एंड राइटर्स इसलिए नहीं आ रहे हैं, उभर पा रहे हैं. उसमें सबसे बड़ी जो लैक्यूना विच आई फाइंड इज के उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है. अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस में एज अ राइटर व्हाट आई बिलीव कि राइटिंग courses, writing as a subject needs to be introduced at school level. जैसे कि आप foreign में देखते हैं, we have classes for creative writing, we have classes for content writing, but कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है. तो जो भी छोटे छोटे artist उभर रहे हैं, या तो वो अपनी मेहनत से आगे आ रहे हैं, या तो उनका एक passion develop होता है. But I really feel कि writing एक बहुत ही powerful career बन सकता है, but the government needs to help अलॉट. क्योंकि अगर वो हमें स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, पब्लिशिंग में हमें अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, लाइक देयर कैन बी टॉप 10 राइटिंग्स ऑफ द ईयर, देयर कैन बी फंड्स, देयर कैन बी ग्रांट फॉर पीपल. हाँ, कुछ एकेडमी जैसे साहित्य एकेडमी है, जेके कल्चरल एकेडमी है, बट टू बी ऑनेस्ट कि इंग्लिश में जो लिखना चाहते हैं उनके पास उतने एवेन्यूज अभी नहीं है. और एक एकेडमी इट कैन नॉट कैटर टू द नीड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ राइटर्स. सो आई रियली फील कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ पे मल्टी मिलियनेयर्स हैं, जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, दे आर रनिंग हॉस्पिटल्स, दे आर रनिंग स्कूल्स, दे आर रनिंग इंस्टीट्यूट्स, उनको राइटिंग के हवाले से भी कुछ करना चाहिए. कुछ राइटिंग वर्कशॉप्स रखने चाहिए, राइटिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जहाँ पे इन चीज़ों की नॉलेज प्रोवाइड हो सकती है. तो आई रियली होप कि अगर ये चीज़ें होंगे तो क्वालिटी राइटर्स हमारे कश्मीर में काफ़ी दिखेंगे, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू, व्हाट आई बिलीव.
इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कश्मीर में ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स ज़रूर आएंगे जहां पे लिखने वाले जो कश्मीर के अंदर ऑथर्स हैं उनको मौका मिलेगा कि वो अपना टैलेंट, अपना पैशन जो है उसको निखार सकें, उसको बेहतर कर सकें और अच्छे ऑथर्स कश्मीर प्रोड्यूस कर सकें. तो मैम, आप बताएं कि आपका फेवरेट जनर कौन सा है, आप कौन से जनर पढ़ना पसंद करते हैं और कौन से जनर्स में लिखना पसंद करते हैं?
जी, आई लाइक टू रीड एवरी जॉनर, बट कहीं ना कहीं जो साइंस फिक्शन है, हिस्टोरिकल बुक्स हैं, या हमारे कश्मीर के बारे में जो लिटरेचर लिखा गया है, सो आई रियली लाइक टू रीड दैट. जो मतलब ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी गई हैं. तो मेरा ये मानना है कि अगर आप हर एक जॉनर से कोई भी बुक पिक करते हैं तो आपकी राइटिंग्स जो है वो मायोपिक नहीं रह जाती है. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन वन जॉनर, आई रियली होप कि जो भी राइटर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें. तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी. सो आई रियली फील कि हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा अबाउट माई फेवरेट जॉनर, सो हिस्टोरिकल बुक्स एंड साइंस fiction, I really love to read about those. जैसे Dan Brown की books हैं, I really enjoy reading them.
Kosho Talks podcast पे तरह तरह के लोग आते हैं. एक चीज जो common सब लोग बताते हैं कि negativity in Kashmir, कश्मीर के अंदर जो हमारी आज की generation है, कदर हाल बेहतर है. आज की generation के लोग appreciate भी करते हैं. एक side में जो negativity लोगों के अंदर पाई जाती है, लोगों को पता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप एक author हैं, तो आप जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हो कश्मीर को वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत काम आएगी कश्मीर की आने वाली जनरेशन के लिए. लेकिन सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे जब कश्मीर का कोई भी टैलेंट शो होता है, कश्मीर के अंदर कोई बच्चा लिखता है, कोई गाता है, कोई खेलता है, तो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। हमारे जो आर्टिस्ट हैं कश्मीर के अंदर, उनको वो 100% पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता, और सीधी सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि 100% पॉजिटिव आ भी नहीं सकता कहीं से, क्योंकि हम लोगों के जो जहन होते हैं सबके एक जैसे जहन नहीं होते, सबके ऐसे क्रिएटिव जहन नहीं है कि हम लोगों को अप्रिशिएट करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। तो मैम आप बताएं, बीइंग एन ऑथर, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, सोशल मीडिया हो या पर्सनल लाइफ हो, कश्मीर के अंदर किस तरह की रिएक्शन लोगों की आती है, किस तरह से लोग आपको सपोर्ट करते हैं?
जी देखिए, हर सोसाइटी में दो सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन वो होता है कि जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो आपके काम को बहुत सराहते हैं, और एक सेक्शन ऐसा होता है जो आपके दे पिन पॉइंट योर एरर्स, जो आपके काम पे कमेंट करते हैं, जो आपके काम को नहीं सराहते। सो ऐसा जो है ये कश्मीर में नहीं है, ऐसे लोग आपको हर सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। बट एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी, सिंस वी आर लिविंग इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, हमारी यूथ जो है इनमें थोड़ा सा एग्रेशन, टॉलरेंस की कमी है, क्योंकि हम हालात ने हमें ऐसा बना दिया है। तो कोई भी, अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी राइटर है, कोई भी ऑथर है, अगर वो किसी इवेंट में जाते हैं, किसी चीज में अपने वॉइस को आगे लाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम एक पर्टिकुलर मिशन के साथ जोड़ देते हैं। सो इट शुड नॉट रियली हैपन। बट एज एन राइटर, एज एन ऑथर, आई हैव बीन शॉवर्ड विद ट्रिमेंडस लव एंड सपोर्ट ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स। लोग बहुत ज्यादा मेरे काम को प्यार करते हैं, मुझे एनकरेज करते हैं, तो आई रियली एम हम्बल्ड एंड वेरी मच इंडेटेड टू पीपल फॉर देयर सपोर्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। और जैसा कि यहाँ पे हम अब किसी की सोच तो नहीं बदल सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि हमारा मोटिव क्या है, कि हम क्यों कर रहे हैं, बट एट द एंड ट्रूथ जो है दैट ट्रायम्फ्स। तो मेरा यही गोल है कि जो भी मैंने सोसाइटी के लिए मैं करना चाहती हूँ या कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, एट द एंड जो भी मेरा मोटो है वो सामने आ ही जाएगा, बिकॉज यू कैन नॉट हाइड ट्रूथ। सो आई रियली होप कि लोग जो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो ये समझते हैं कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, या फिर हम कुछ स्टेट के हवाले से, या वी आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, सो इट शुड नॉट रियली हैपन। एंड आई रियली होप कि हमें जो है और भी ज्यादा सपोर्ट मिले, बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें मिल रहा है। एक आर्टिस्ट को यही चाहिए कि लोगों के प्यार से ही उन्हें एनकरेजमेंट मिलती है, तो ये होना चाहिए कि लोग जो है बहुत वेलकमिंग एटीट्यूड से हमारी राइटिंग्स को, हमारे वर्क को अप्रिशिएट करें। दिस इज द नीड ऑफ आर, क्योंकि हमारे कश्मीर में बहुत उमदा कलमकारों की बहुत जरूरत है जो सोसाइटी के इश्यूज को सामने ला सके।
वक्त के साथ साथ लोग और सोसाइटीज मॉडर्न हो रही है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटीज़ और लोगों में तब्दील होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ, जैसे कि डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग। आजकल की जनरेशन हमारी, वो चाहे स्कूल के बच्चे हों या ऑथर्स हों या फिर बहुत बड़े प्रोफेशनल्स जो हों, वो प्रेफर करते हैं डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग को, यानी कि PDF से पढ़ लेना, यूट्यूब पर पढ़ लेना, उमेडी या फिर बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन सोर्सेज हैं जहाँ से बच्चे पढ़ सकते हैं। डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग एक बहुत अच्छी इन्वेंशन है। आपके पास बुक्स नहीं है, आपको कोई चीज़ पढ़नी है, तो आप इंस्टेंटली अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के ऊपर जल्दी जल्दी वो चीज़ जो है सर्च करके ढूंढ के पढ़ सकते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक किताब के ऊपर से पढ़ते हैं तो हम एक इन टच विद द ऑथर होते हैं, जो ऑथर कुछ कहना चाहता है हमसे, हम उसको अपने दिल के कानों से सुन सकते हैं, हमारा जो फोकस होता है वो डलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप YouTube के ऊपर कोई लेक्चर देख रहे हैं तो उसके लेफ्ट में या राइट में या स्लाइड बार में काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं, सजेशंस होती हैं कि ये वाला वीडियो देखें, ये वाली चीज़ें देखें, तो हमारा जो फोकस है वो एक चीज़ के ऊपर नहीं रहता। और एक जो मज़ा आता है, जो प्रेम आता है, जो सुकून आता है, वो डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग में नहीं आता। ठीक है, डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग ज़रूरियात ज़िंदगी है कि हमें कहीं पर जल्दी जल्दी कुछ पढ़ना है तो हम पढ़ लें, तो मैम डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग जो है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो जनरेशन है इन्हें प्रेफर करना चाहिए कि बस ये सिर्फ डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग से ही पढ़ें, किताबें फाड़ के फेंक दें, या फिर ऐसा है कि डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग जो है हम इसको सेकेंडरी ऑप्शन रखें?
जी देखिए, पर्सनली मैं ये कहूंगी कि आई एम नॉट अ पर्सन हु गोज फॉर डिजिटल रीडिंग. वो रीजंस ये भी हो सकते हैं कि बीइंग एन ओल्ड स्कूल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बुक्स को अपने हाथ पे, बिकॉज हैविंग अ बुक इन योर हैंड इज लाइक अ ड्रीम. तो मुझे नहीं लगता है कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, कोई भी PDF रिप्लेस कर सकती है उस चीज को जो खुशी मिलती है एक ऑथर को, एक रीडर को एक बुक हाथ में रखने से. टू बी ऑनेस्ट, आई नेवर रीड बुक्स फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो आइडियाज जो वो ऑथर के साथ कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं मैं लूज कर रही हूँ. टुडे ऑल्सो आई गॉट 10 books आउट ऑफ माई लाइब्रेरी, एंड आई वॉज थिंकिंग कि जो बुक्स हाथ में रखने का मजा है, जस्ट नाउ टुडे आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, वो किसी PDF में नहीं है. बट हाँ, एक चीज मैं और एक यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, वी शुड नॉट कम्प्लीटली आउट रूल दी वैल्यू ऑफ डिजिटल मीडिया. लाइक कभी हम वी आर इन अ हरी या हमारे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है कि हम रोज एक नई किताब ला सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है कि वी कैन डाउनलोड PDF, वी कैन जस्ट रीड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. लाइक कभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कभी मैं कहीं और हूँ जहाँ मुझे बुक्स अवेलेबल नहीं है, सो एट दैट टाइम आई कैन गो फॉर हार्ड सॉफ्ट कॉपीज. बट यस, मेरा ये पर्सनली मानना है कि इफ यू हैव टू कनेक्ट डीपली विद अ बुक, विद द ऑथर, तो आपको एक हार्ड कॉपी का जो एक सुकून मिलता है वो अलग ही होता है. सो दैट्स व्हाट आई फील एज एन ऑथर. बट कंप्लीटली आई कैन नॉट ओवर रूल द पावर ऑफ डिजिटल मीडिया. इट हैज इट्स बेनिफिट्स, इट हैज इट्स प्रो एंड कॉन्स, बोथ ऑफ इट.
कौशो टॉक्स पॉडकास्ट पे हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, उनके बारे में अपने सुनने वालों को सब कुछ बताते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पॉडकास्ट की शुरुआत में हम अपने सुनने वालों को अपने गेस्ट्स का एक इंट्रोडक्शन दें। तो मैम, जब हमने आपके बारे में रिसर्च की तो आपका इंट्रोडक्शन इतना लंबा था कि कम से कम 20 मिनट का टाइम आपके इंट्रोडक्शन में ही निकल जाता। और यूं भी है कि कुछ लोग जो है वो तारीफ और तारुफ के मोहताज नहीं होते, फिर भी हम चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ हमसे शेयर करें अपार्ट फ्रॉम एन ऑथर, क्योंकि ऑथर जो है एक पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप ऑथर हैं तो आप उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, क्योंकि पैशन फॉलो कर रहे हैं आप, ये आपका जुनून है, जज्बा है, टैलेंट है। तो ये कोई जॉब नहीं है वाइट कॉलर की, आपको 20,000, 50,000, 10 लाख की सैलरी आ रही है। तो अमूमन लोगों को हम पूछते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जिसको कैसे बैलेंस करते हो, लेकिन आपसे हम ये पूछेंगे मैम कि आप अपनी पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ वर्सेस पैशन वाली जो लाइफ है इसको कैसे मैनेज करते हो, हाउ डज इट वर्क?
जी बिल्कुल, राइटिंग तो एक पैशन है, बट उससे हम घर का खर्चा नहीं चला सकते. सो अपार्ट फ्रॉम माय राइटिंग, आई हैव आल्सो कंप्लीटेड माय PhD, आई हैव डन माय डॉक्टरेट इन साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट. राइट नाउ आई एम इन्वॉल्व विद सम रिसर्च प्रोजेक्ट्स. तो फेलोशिप में मैं कुछ प्रोजेक्ट्स अभी आई एम वर्किंग विद दोज प्रोजेक्ट्स. तो प्रोफेशनली मेरा रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड मुश्किल होता है लाइक फैमिली को बैलेंस करना, राइटिंग को बैलेंस करना, वर्क को बैलेंस करना, करियर को बैलेंस करना. बट आई रियली फील कि एक लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है. तो यू स्टार्ट योर डे अर्ली एंड देन यू गिव टाइम टू एवरीथिंग, मुझे लगता है सब मैनेज हो जाता है. सो राइटिंग के अलावा मेरा यही इंटरेस्ट रहता है कि मैं अपना जो रिसर्च है उसमें बहुत ज़्यादा आगे जाऊँ. आई रियली वॉन्ट टू राइट सम क्वालिटी पेपर्स जिनमें और ज़्यादा इश्यूज जो है वो हाईलाइट हो सकते हैं.
आप ऑथर के साथ साथ एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप PhD के बाद अभी रिसर्च जो कर रहे हैं वहाँ पे आपको पढ़ना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है। तो हमें आप ये बताएं कि एक ऑथर, एक आर्टिस्ट, एक लिखने वाला, एक राइटर, उसके लिए पढ़ना और लिखना कितना ज़रूरी होता है?
जी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. अभी जस्ट नाउ मुझे एक मैसेज आया था, एक छोटी बच्ची मैसेज कर रही थी दैट आई वांटेड टू राइट. सो तो पहला क्वेश्चन आई आस्क्ड हर, डू यू रीड, एंड शी सेड नो. तो आई टोल्ड हर कि इन ऑर्डर टू राइट बेटा, यू जस्ट नीड टू रीड एटलीस्ट 1,000 books बिफोर यू थिंक ऑफ राइटिंग. तो जैसा कि मैंने इब्तिदा में ही आपसे शेयर किया कि आई वॉज अ वोरेशियस रीडर, मेरे ख्याल से एक बुक लिखने के लिए आपको 1,000 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो क्राफ्ट जानने के लिए, राइटिंग्स को पॉलिश करने के लिए, राइटिंग का नैक समझने के लिए, राइटिंग इज अ गिफ्ट, यानी कि आपके पास गिफ्ट है, बट उस गिफ्ट को आप पॉलिश कैसे करेंगे? इट कम्स विद रीडिंग। तो ऐसा नहीं है कि आप लिखोगे एंड यू थिंक कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा होल्ड है अपनी राइटिंग्स पे, दैट्स रॉन्ग। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड विल नॉट सर्वाइव यू इन दी राइटिंग फील्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी लिख रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसके बारे में बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। और एज आई ऑलरेडी सेड दैट यू नीड टू हैव ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिटरेचर। तो बहुत कहते हैं ना, टू मेनी बुक्स बट टू लिटिल टाइम, वैसा ही कुछ मेरे साथ भी है। लाइक आई वॉन्ट टू रीड मोर एंड मोर बिफोर आई प्लान ऑफ राइटिंग अ थर्ड बुक। So I request all the budding writers to read a lot before thinking of writing.
जी मैम, जैसा आपने कहा कि ऑथर के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मैम आप बताएं कि आप क्या पढ़ते हैं, आपके फेवरेट ऑथर्स, वो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, और कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आप पढ़ना पसंद करती हैं, और स्पेशली कश्मीर के अंदर कोई ऐसा ऑथर है जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनकी लिखाई आप पसंद करते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है?
इंटरनेशनल लेवल पे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि मुझे जो डैन ब्राउन, जैसा मैंने कहा, आई रियली लाइक रीडिंग हिज बुक्स। जॉन ग्रीन है, जॉन ग्रे है, देर आर स्टेफनी मेयर है, एंड देन देर इज वर्जीनिया वुल्फ है। मैं उनकी बुक्स पसंद करती हूँ बहुत ज्यादा। एंड देन अब नेशनल राइटर्स की बात करें तो माई टॉप फेवरेट इज अरुंधति रॉय, जिनकी बुक्स, जिनके एसेज बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं मेरे साथ, बिकॉज शी राइट्स फेयरलेसली। तो रिसेंटली उनकी बुक आज़ादी, आई थिंक एवरी कश्मीरी रीडर मस्ट हैव रेड दैट। तो टुडे ऑल्सो मैं कुछ पेजेस उसके पढ़ रही थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट सम नॉलेज अबाउट फ्यू थिंग्स। एंड कश्मीर में अगर आप डोमेस्टिक राइटर्स की बात करेंगे तो हमारे जो शहनाज बशीर साहब हैं, मिर्ज़ा वहीद साहब हैं, एंड रिसेंटली जो शबीर अहमद मीर साहब हैं, जिन्होंने द प्लेग अपॉन अस लिखी है, आई रियली एन्जॉयड रीडिंग दैट बुक। बहुत ही खूबसूरत राइटर्स हैं जो मुझे जो लगता है कि हमारे कश्मीर ने अभी तक प्रोड्यूस की है। बशारत पीर इज ऑल्सो देयर। तो मैं प्रेजेंट की जो मॉडर्न, मतलब कंटेम्प्रेरी टाइम्स में लिख रहे हैं, और जो हमारे कश्मीर तो रहा ही है, इट हैज बीन अ लैंड ऑफ राइटर्स, पोइट्स एंड सेंट्स। तो बहुत ही ज्यादा हमारे कश्मीर में भी बहुत ही अच्छे कलमकार रह चुके हैं। तो आई रियली एंजॉय रीडिंग, जिनका भी मैंने नाम लिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं साइड लाइन नहीं करूंगी उन लोगों को जिन्होंने कुछ भी लिखा। सो आई एज अ राइटर, एज अ रीडर, आई अप्रिशिएट द वर्क ऑफ एवरी राइटर, चाहे वो छोटी सी छोटी पोइम है, छोटा सा छोटा आर्टिकल है, या कोई बड़ी सी बड़ी किताब है जो बहुत फेमस है। तो मैं सब कुछ पढ़ती हूँ, बट हाँ, ये जिनका मैंने नाम लिया, आई रियली एंजॉय रीडिंग देम।
जी मैम, जैसा कि हमने अपने पॉडकास्ट की शुरुआत में ही कहा था कि कश्मीर के अंदर आज की जनरेशन में लिखने वाले या फिर पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। कोशो टॉक्स पॉडकास्ट एक नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है और यहाँ पे हम सब वॉलंटियर्स काम करते हैं। जब भी हम एक नया पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, हम अपने वॉलंटियर्स से एक फीडबैक मांगते हैं कि हम इनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं और आप अपनी फीडबैक दें। मैम, जब हमने कहा कि अजरा मुफ्ती के साथ हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, तो कुछ ऐसे भी हमारे वॉलंटियर्स हैं जो आपके स्टूडेंट रह चुके हैं, जैसे कि शिफा गिलानी IMBA स्टूडेंट हैं, और आबिरू मलिक लाल बाजार से हैं, और नसरीन मजीद जो कुपवारा से हैं, ये सब आपके फैंस हैं। तो मैम, इनकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इनके लिए अपनी 3 फेवरेट बुक्स रिकमेंड करें जो बहुत अच्छी हैं और जो आप चाहती हैं कि सबको पढ़नी चाहिए।
जी बिल्कुल, पहले तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी, द 40 रूल्स ऑफ लव बाय एलिफ शफक। तो बहुत अच्छी बुक है, मेरा विजन बहुत ज्यादा ब्रॉड हुआ वो बुक पढ़ने से। दैट्स वन ऑफ द बुक्स दैट आई रेकमेंड। द नेक्स्ट इज जो अभी मैंने बुक पढ़ी आज़ादी, because I, as I already told you, ki I'm more interested into historical facts and all those things. So Azadi by Arundhati Roy is also a very recommended read by me. And third one, jo main suggest karungi ki main koi ek book nahi, but main aapko ek author ke baare mein bataungi ki aap unki sari books padhe, Dan Brown. Because unki jo Inferno hai, ya phir unhone Da Vinci Code likhi hai, ya The Lost Symbol, to आपको एक अलग ही दुनिया में आप चले जाएंगे वो पढ़ के, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज भी मिलेगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक लिटरेचर. तो ये चीज़ें हैं. एंड वन मोर इज़ देयर बाय डाइवर्जेंट बाय वेरोनिका रॉथ. तो ये कुछ बुक्स हैं जो मुझे बहुत ही पसंद आई हैं. तो आई रिकमेंड एवरी रीडर टू रीड दिस बुक्स. सो दैट्स व्हाट आई सजेस्ट.
थैंक यू सो मच फॉर योर रिकमेंडेशन मैम. पॉडकास्ट में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं सभी सुनने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ कोशो टॉक्स का लोगो, कोशो टॉक्स का नाम निकाल के आप हमारे पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर किया करें. इसलिए नहीं कह रहे कि आप कोशो टॉक्स को प्रमोट करें या शेयर करें. हम बाकी यूट्यूबर्स या फिर बाकी पॉडकास्टर्स की तरह ये नहीं कहते कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. बिल्कुल भी नहीं. आप ना ही लाइक करें, ना ही फॉलो करें और ना ही सब्सक्राइब करें. अगर आप कुछ कर सकते हैं तो है एक शेयर. जब भी आप कोशो टॉक्स का कोई पॉडकास्ट शेयर करते हैं तो यूं समझें कि आप डोनेट कर रहे हो कोशो टॉक्स को. और आप चाहें तो आप हमारे आर्यू पॉडकास्ट पे वीडियो बना के भी पब्लिश कर सकते हैं. और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप हमारे जो होस्ट, जैसे अभी मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं, इस आवाज़ को निकाल के उन लोगों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएँ जो हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ होते हैं. हम आपसे ये सब इसलिए कहते हैं कि कोशो टॉक्स पॉडकास्ट पे जो भी हमारे गेस्ट आते हैं वो बहुत सारी अच्छी बातें आप तक पहुंचाते हैं, और ऐसी बातें जिनसे कम्युनिटीज़ में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं. और काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें सुन के काफ़ी सारे लोग इंस्पायर और मोटिवेट होते हैं. बात करते हैं वुमन एम्पावरमेंट की. वुमन एम्पावरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है इस पर हर एक पॉलिटिशियन, हर एक मौलवी, हर एक पेरेंट, हर एक खास व आम आदमी बात करता है. अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा. ग्राउंड लेवल पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही. कहते हैं कि इस्लाम से पहले औरतों को जिंदा दफन किया जाता था, और बदकिस्मती से हमारे कश्मीर में आज भी इनडायरेक्टली औरतों को जिंदा ही दफन किया जाता है. वो औरतें जो सुसाइड करती हैं, या फिर वो औरतें जो अपना एम, पैशन, अपने सपने पूरे करने के लिए घरों से बाहर निकलती हैं. अब कोई बच्ची कश्मीर में अगर ऑथर बनना चाहती है, कोई फुटबॉलर बनना चाहती है, कोई सिंगर, कोई आरजे, कोई पायलट, बदकिस्मती से हमारी कम्युनिटी यानी कि कश्मीर के लोग उन्हें जिंदा दफन कर देते हैं. ज़रूरी नहीं कि उनकी लाशें भी आपको मिलें, लेकिन अमूमन जनाजा उनकी उम्मीदों का, उनके सपनों का होता है. मैम, हम चाहते हैं कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करें.
जी 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 बिल्कुल. वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर हम करते हैं स्पेशली कश्मीर के हवाले से, तो मैं ये कहूँगी कि थैंकफुली जो पहले सिनेरियो था फीमेल्स को लेके, वो आज थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन लोग ले रहे हैं या वो अपनी वाइव्स की अचीवमेंट्स को, उनके मयार को कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं. बट अगेन इसमें भी दो चीज़ें आती हैं कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा है जो अपने घर की खवातीन को, चाहे वो बहन है, बेटी है, उनकी वाइव्स है, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. बट एक जो हम देखते हैं, एक सेक्शन ऐसा है जो अभी भी औरतों को अपने पैरों की जूती समझते हैं. बट व्हाट आई रियली सजेस्ट कि बहुत ही सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, क्योंकि पैंडमिक जो रहा है हमें, विच हैज़ एक्सपोज द बिटर एंड हार्श रियालिटीज ऑफ पीपल, उसमें हमने ये चीज़ देखी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. इवन कि अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है, विमेन पुलिस स्टेशन, वहाँ पे एक दिन में एटलीस्ट 1500 डिस्ट्रेस कॉल्स आती थी, बिकॉज दे यूज टू फेस अब्यूज, टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एवरी काइंड. तो मेरा ये मानना है कि हम जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एट दी ग्राउंड लेवल हम अभी भी वो चीज़ सुधार नहीं पा रहे हैं. बट अगेन मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट के हवाले से जो है चेंज बाद में आएगी. पहली जो चेंज वो है, वो इंसान को अपने जहन में खुद लानी है. बिकॉज अगर आप अपनी बीवी को पीट रहे हो, गवर्नमेंट के नॉट कम एट दैट टाइम. तो गवर्नमेंट को हर टाइम ब्लेम करना इज ऑल्सो नॉट राइट, क्योंकि पहली चेंज जो है वो हमें अपने जहन में करनी है, अपने दिमाग से करनी है, अपने फैमिली में करनी है, अपनी डायनेस्टी में करनी है. सो दी हॉलो स्लोगन्स लाइक विमेन एम्पावरमेंट तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हमारे माशरे के मर्द हजरात जो है औरतों को वो मकाम ना दें जिसकी वो हकदार है. और मैं, जैसे कि मैंने रिसेंटली भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि हमारे मजहब में, कुरान शरीफ में जो खवातीन के हवाले से इतनी उमदा बातें हुई हैं, दैट होल सूरा हैज़ बीन डेडिकेटेड टू अस. सूरे निसा, सूरे नूर में हमारे औरतों के वाले और के हवाले से बात हुई है. तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो लास्ट सर्मन उनका था, तो उसमें भी जो ऑर्फन्स और औरत के हवाले से बात की है, उनके राइट्स के हवाले से बात की है. सो आई रियली होप कि हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पे जो भी तशद्दुद हो रहा है औरतों के साथ वो कम हो. एंड एज आई ऑल्सो सेड, जैसे कि हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मुझे अपने सारे इंटरव्यूज की वो बातें याद आ रही हैं. सो एज आई ऑलवेज से कि विमेन एम्पावरमेंट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक मैन एम्पावर ना हो. सो इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग दीज प्रोग्राम्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, आई रियली विश कि वो मर्द हजरात जो तशद्दुद करते हैं उन्हें एक कॉन्फ्रेंस में बिठाया जाए और उनकी काउंसलिंग हो. बिकॉज विमेन आर एम्पावर्ड, हम घर भी चलाते हैं, अपना करियर भी चलाते हैं, अपने पैशंस को भी फॉलो करते हैं, अपने घर का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं. बट मर्द हजरात जो है वो इन चीजों को नहीं, व्हाट दे रियली फील कि वो उन चीजों को व्हाट ग्रांटेड लेते हैं, बिकॉज दे फील कि ये हमारा काम है करना. एक्चुअली इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा नहीं, ये हम एज अ फैमिली, हम सबका इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो वो लोग जो हमें सुन रहे हैं, आई रियली अर्ज देम टू रिस्पेक्ट देयर वाइव्स, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है एक औरत के लिए दूसरे घर में जाना, वहाँ के तौर तरीकों को अपनाना और एक्सेप्ट करना देम एज अ फैमिली. तो आप उसे भी प्यार से रखें, उन्हें वेलकम करें, दे शुड नॉट इन्वॉल्व देयर वाइव्स इन एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा. कल ही मेरी एक लेडी से बात हो रही थी एंड शी टोल्ड मी दैट हर सन इज ऑटिस्टिक. ऑटिज्म एक बहुत ही क्या कहेंगे, जानलेवा तो नहीं कहेंगे, बहुत ही एक दर्दनाक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है. सो शी टोल्ड मी दैट माय सन इज ऑटिस्टिक बिकॉज आई हैड अ वेरी स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी. कहा कि आई हैव 5 kids एंड ऑल माय किड्स दे सफर सम काइंड ऑफ एलमेंट बिकॉज आई यूज टू बी वेरी स्ट्रेस्ड एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. तो ये भी एक चीज है कि जो आप तशद्दुद अपने वाइव्स पे कर रहे हैं, अपनी औरतों पे कर रहे हैं, वो आपकी आने वाली नस्लों को भी खराब कर रही हैं. सो ये बहुत ही ज्यादा एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं कि चाहे आप किसी भी क्राइम में हैं, साइबर स्टॉकिंग है, साइबर बुलिंग है, इव टीजिंग है, मोलेस्टेशन है, यू जस्ट नीड टू कम आउट ऑफ दैट. क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको कोई हक नहीं है कि आप सड़कों पर आजादी चलाएं, बिकॉज आप अपने माइंड में ही कैद है. जब तक आप अपने माइंड से आजाद नहीं हो जाएंगे तब तक आपको और कोई आजादी सामने नहीं दिखेगी. सो इट्स हाई टाइम दैट यू कम आउट ऑफ दैट पेट्रियार्कियल माइंडसेट एंड रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ वुमन इन योर लाइफ. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट.
जी मैम, बहुत खूब कहा आपने. और अक्सर बात करते हैं चेंजेस की, तो चेंज ना तो खुदा आसमान से उतर के कुछ चीज़ के चेंज करता है और ना ही गवर्नमेंट चेंजेस करती है. चेंज एक इंसान के हाथ में होती है, एक आदमी के हाथ में होती है, पेरेंट्स और बच्चों के हाथ में होती है. उम्मीद करते हैं कि हमारे लिसनर्स इस पॉडकास्ट को अपने पेरेंट्स तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि वो भी सुने कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो वो घरों में तशद्दुद करते हैं. ऐसा नहीं है कि कश्मीर में सभी घरों में ये हाल हो, लेकिन अक्सर कश्मीर में पाया जाता है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो औरतों को हमेशा डिमोटिवेट और डिग्रेड करते हैं, मतलब तरह तरह की सख्तियाँ, परेशानियाँ और मुसीबतें. और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब एक औरत शादी करके दूसरे घर में जाती है तो उसके लिए वहाँ पे ज़िंदगी फिर से स्टार्ट करने की जैसे होती है, और वह औरत बिना उफ़ बिना हाइक किए
सब नखरे उठाती है, सब काम करती है, खाना पकाना, घर को चलाना, उसके बावजूद भी उनके जो मर्द हैं वो नखरे करते हैं तरह तरह के। अगर एक औरत सुबह उठ के अपने हमसफर को यानी अपने शोहर को खाने के लिए कुछ ना दे, पैक करके कुछ ना दे, कपड़ों को प्रेस ना हो, टाई ना हो, चाहे कुछ चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई गेस्ट एम्प्लॉय हो, चाहे कोई सफाई करने वाला हो, वो तब तक कम्युनिटी को सर्व नहीं कर सकता जब तक एक औरत उसको सुबह सुबह स्टार्ट नहीं करती। मैम थैंक यू सो मच, आपने वुमन एम्पावरमेंट पर बात की और उम्मीद करते हैं कि वुमन से ज़्यादा जो मैन एम्पावरमेंट की ज़रूरत इस वक्त कश्मीर को है, लोग उस पर ध्यान देंगे, लोग उस पर सोचेंगे। जी मैम, जैसा आपने पहले कहा था कि कश्मीर के अंदर जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पे जो तालीम का निज़ाम है वैसा नहीं है कि जैसा बाहर की कंट्रीज़ में होता है, जहाँ पे बच्चों को लिखने के लिए अलग से क्लासेस होती हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग, नावल लिखना, शायरी लिखना, आर्टिकल्स लिखना, मज़मून लिखना। यहाँ पे बच्चों को 8वीं 10वीं क्लास में सिखाया जाता है कि आप अपने हेडमास्टर को एक चिट्ठी लिखें, 2 दिन की छुट्टी या फिर पिकनिक के लिए एप्लीकेशन लिखें, बस। इससे अलावा बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाया जाता। मैम कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर पैशन है कि वो लिखें, आथर बने, कोई पोइट्री लिखता है, कोई नावल्स लिखता है, तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेपर्स में जो है आर्टिकल्स लिखते हैं। तो मैम अपनी राइटिंग सुधारने के लिए, निखारने के लिए आप इस जनरेशन के जो लिखने वाले हैं उनके लिए कोई मैसेज?
जी बिल्कुल, मेरा ये ही मैसेज होगा। पहले तो मैं गुजारिश करूंगी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, बिकॉज आई बिलोंग टू सच अ फैमिली जहाँ पे मुझे अपने पेरेंट्स ने, अपने मदर फादर ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम भी होता था एंड आई ऑलवेज यूज टू हैव अ नॉवल इन माई हैंड। लेकिन हम कश्मीर में देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव माइंड सेट बहुत बदल गया है, आजकल लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश होगी कि अगर आपके बच्चे में एक पैशन है कि वो दे वांट टू बी राइटर, दे वांट टू बी एनी अदर थिंग, दे वांट टू बी परस्यू देयर करियर इन फाइन आर्ट्स, इन लिटरेचर, इन राइटिंग, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज पेरेंटल सपोर्ट इज ऑफ पिवोटल इम्पोर्टेंस। दूसरी बात, अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, राइटर्स हैं, जो राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आई टेल यू देयर इज नो मनी इन राइटिंग फील्ड, बट देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। अगर आप मनी भी है बट एट फॉर दैट यू नीड टू वर्क रियली रियली हार्ड टू राइट बेस्ट सेलर्स, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स। तो जेके रावलिंग वो एक बिलियनर है ड्यू टू हर राइटिंग्स, बट हर एक इंसान जेके रावलिंग नहीं बन सकता, बट एटलीस्ट वी कैन ब्रिंग अ चेंज हमारे कलम से। अगर टारगेट ऑडियंस हमारा कम ही है बट हम जो लिख रहे हैं दैट शुड बी अ क्वालिटी राइटअप। तो अभी भी मेरी बात हो रही थी कि आर्टिकल लिखने के लिए दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, एक तो आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, बट इट शुड कैरी इस मैसेज, जो मैसेज है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए कि आपकी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में अलग क्या है जो पहले अभी तक नहीं लिखा गया। उन मुद्दों पे बात कीजिए और अपने आसपास के जो सिनेरियो, बी वेरी ऑब्जर्वेंट ऑफ योर सराउंडिंग्स, क्योंकि एक राइटर जो होता है उसकी सारी राइटिंग्स जो है वो डिपेंडेंट होती है ऑन हिज surroundings, on his atmosphere. So just try to be very positive about your writing और बहुत ज़्यादा अपने writing पे work करना। It's not an easy career option, but it's a very fun thing to do. If you really love writing, it's a very fun thing to do. That's what my message would be.
Thank you so much, ma'am. आप कोशु टॉक्स पॉडकास्ट पे आए, आपने हमसे ढेर सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और आखिर पे हमारे सुनने वालों के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम जो आप उन तक पहुंचाना चाहें?
जी बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले आई कॉन्ग्रेचुलेट दी होल टीम जो आप कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ही एक नॉवल इनिशिएटिव है लोगों की बात ऑडियंस तक पहुंचाना। सो एक मैसेज ये भी रहेगा कि आप अपने घर पे, आप अपने सोसाइटी में जो भी है एक चेंज तब तक नहीं ला सकते जब तक आप अपने माइंडसेट को चेंज ना करें। माइंडसेट को चेंज इन द सेंस, इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ ड्रग अब्यूज, इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, आई रियली विश कि आप उन चीज़ों से बाहर आए और एक अच्छी हॉबी को परस्यू करें, एक अच्छे लाइफस्टाइल को परस्यू करें, ताकि आपकी जो लाइफ है वो एग्जाम्पल के तौर पे सेट की जाए, नॉट एज एन बैड एग्जाम्पल बट एज अ गुड एग्जाम्पल। सो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, और हम जानते हैं कि हम एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रह रहे हैं, पॉजिटिविटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बट एट दी एंड आपको अपनी पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली, यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, एंड दैट्स डिपेंडेंट ऑन द वे यू लुक आफ्टर योर सेल्फ. सो अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में चेंज लाने के लिए अपने माइंड सेट को चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड माइंड सेट को पॉजिटिव रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट.
आप सुन रहे थे कोशो टॉक्स पॉडकास्ट. अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा, आप हमारा पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें और हमें भी बताएं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब या फिर जिस भी ऐप पे आप हमारे पॉडकास्ट सुनते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं. हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, स्पॉटिफाई पे भी फॉलो करें. हमारा हैंडलर है द कोशो टॉक्स. अगर आपका कोई मशवरा, कोई सुझाव, कोई नसीहत या फिर कोई शिकायत है, आप हमें मेल कर सकते हैं. हमारी ईमेल आईडी है thekoshotalks@gmail.com या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट koshotalks.com. आप कोशो टॉक्स पॉडकास्ट सभी स्ट्रीमिंग ऐप्स पे सुन सकते हैं. मजीद जानकारी के लिए विजिट करें koshotalks.com/follow.